अर्पण रेडियो पर प्रस्तुत है लेखक जयशंकर की लिखी कहानी राग विराग।
वाचक स्वर है सीमा सिंह का।
मुझे अस्पताल में जो पलंग मिली थी वहाँ एक फ्रेंच विंडो थी। वहीं से मैं पराई शहर के चिड़ियाघर की फेंस, बरगद का बूढ़ा पेड़ और बरसों पुराना कैमरा साथ लिए उस गरीब फोटोग्राफर को देखती रहती। सुबह के वक्त शेर का दहाड़ना सुनाई देता। मन करता कि उसी वक्त शेर के पिंजरे के पास चली जाऊं, किंतु मिर्गी के दो तीन दौरों के बाद कहीं भी अकेले नहीं जाती थी। चिड़ियाघर और अस्पताल के बीच 1 किलोमीटर का फासला रहा होगा। शेर के करीब जाने की इच्छा कितनी छोटी सी तमन्ना थी, लेकिन मिर्गी के चंद दौरों ने 1 किलोमीटर की दूरी को सुदूर देश की यात्रा में बदल दिया था। अधूरी तमन्ना की उन अंधेरी घड़ियों में ही मुझे बचपन के वे दिन याद आते थे, जब मैं अपने सर्वोदयी माता पिता के साथ विनोबा जी की भूदान यात्रा के दौरान एक शहर से दूसरे शहर, गांव दर गांव घूमती रहती थी। कभी मेरी छोटी सी देह का बोझ माँ के कंधों पर होता, कभी पिता के। मेरा सस्ता सा फ्रॉक धूल और पसीने से गंदा हो जाता और मेरी दो चोटियों पर दक्षिण भारत की धूल के कण जमा हो जाते। मिशनरी के अस्पताल में मेरा इलाज 31 बरस का डॉक्टर कर रहा था। वो सांवले रंग और घुंघराले बालों के साथ चश्मा लगाए रहता था। उसके लिए भी वो शहर अजनबी ही था। वो अस्पताल के अहाते के ही एक क्वार्टर में अकेला रहता था। मेरी बड़ी बहन ने बताया था कि मेरी बीमारी की जाँच और पहचान के साथ साथ मुझे होश में लाने के लिए उस युवा डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। वो हर शाम मेरी पलंग के करीब 15-20 मिनट बिताता। मैं उससे उसके परिवार, प्रोफेशन, शहर और दिलचस्पियों के बारे में बातचीत करती। वो जानता था कि उस शहर में सिर्फ मेरी बूढ़ी और बड़ी बहन है जो मुश्किल से दोपहर में आ पाती है। शायद उसे मेरे अस्पताल में अकेले पड़े रहने पर तरस आता। दिन में मैं बहन के घर से मिली रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तकें पढ़ती रहती। वो मुझे ज़्यादा देर तक पढ़ने के लिए मना करता। उसे न गंभीर पुस्तकों से लगाव था और न ही सर्वोदय के कामों से, जिनके बीच मैं बड़ी हुई थी और बूढ़ी हो रही थी। कभी कभी मैं उसे विनोबा जी के साथ बीते अपने बचपन के बारे में बताने के लिए उत्सुक हो जाती, किंतु उसकी उदासीनता से जल्दी ही महसूस होता कि उसके लिए मुझे आते मिर्गी के दौरों का इतिहास इतिहास के उस दौर से ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें भूदान की लंबी और पैदल यात्राएं थीं, विनोबा जी और उनके सहयोगियों की आकांक्षाएं थीं, भूदान के मंत्र को प्रार्थना और प्रवचन, अहिंसा और आस्था के साथ जपता वो 40-50 लोगों का जत्था था। वो उम्र में बहुत छोटा था और उसकी अपनी तरह की महत्वाकांक्षाएँ थीं। उस उम्र में 50 बरस की किसी बीमार औरत से गरीब किसानों की गंभीर व्यथा को व्यक्त करते विनोबा जी को सुनना शायद ही दिलचस्प अनुभव होता होगा। मैं स्वयं भी उस दौर को स्मृतियों के सहारे बिखरे बिखरे ढंग से पकड़ पाती और स्मृति और इतिहास से अजीब सा एकालाप बनता था। वो एकालाप भी क्या था, एक बेतरतीब, आकारहीन और नीरस बकवास ही थी, ग्रामीण किसानों के दर्द की एक सेंटिमेंटल याद। मेरे एडमिट होने के 4-5 दिनों के बाद अखिल आया था। वो मेरा इकलौता लड़का था और इन दिनों बड़ौदा में चित्रकला सीख रहा था। उसकी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा उसके नाना नानी के यहाँ बीता और उसकी मुझमें और मेरे कामों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मेरी माँ के पत्रों से मैंने जाना था कि अखिल कविताएँ लिखता है और उसकी कुछ कविताएँ छपी हैं। बाद में मेरी माँ ने ही उसकी कविताओं की छपी हुई कतरनें भिजवाई थीं और मुझे वे कविताएं बहुत सतही और बनावटी लगी थीं। मैंने उसे लिखा भी था कि कविता लिखना उसका स्वभाव नहीं है और इससे वो आहत हुआ था। वैसे भी वो मुझसे अलग थलग ही रहना चाहता था और मुझे उसकी बड़ी बड़ी बनावटी और बेकार की बातों से तकलीफ होती थी। साधारण, सरल और संसारी बातचीत से उसे नफरत थी और मेरा अपना जीवन गांव और शहर की अनपढ़ औरतों के बीच उनकी साधारण इच्छाओं और ज़रूरतों के साथ बीत रहा था। पढ़ना मेरा हमेशा ही पैशन रहा, किंतु मुझे समझ में बहुत कम आता था। मेरे पिता मुझे पुअर रीडर कहते थे। अब अखिल देर देर तक मेरे करीब बैठा रहता, अर्थहीन संवाद और अर्थपूर्ण खामोशी हम दोनों के लिए असहनीय होती। ना मैं सहज रह पाती और ना ही वो असहज होने से बच पाता। मेरी बड़ी बहन के बूढ़े और बीमार पति घर में रहते और अखिल उनसे बचना चाहता था। मेरी बहन दफ्तर चली जाती और अखिल अकेला रह जाता। दोपहर में वो अस्पताल की राह पकड़ता और वहाँ भी मेरे साथ संवाद के लिए संघर्ष करता रहता। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उससे बाहर जाने और घूमने के लिए कहती, सिनेमा या नाटक देखने के लिए रुपए देती, किंतु छोटे शहर की बड़ी सी वीरानगी के बीच वो ज़्यादा नहीं रह पाता। ना उसे मुक्ति मिलती और ना ही मुझे छुटकारा। एक शाम अपनी इस दुविधा को मैंने डॉक्टर को बताया। पहले तो उसे मेरी तकलीफ ने ही हैरान किया। अपने लड़के से किसी माँ का इस तरह का रिश्ता उसके लिए नया और निराला अनुभव था। शायद उस शाम के बाद ही डॉक्टर की मुझ में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। अब अखिल अपने खाली समय में डॉक्टर के पास चला जाता। किसी किसी शाम को वे दोनों शहर के एक ओपन एयर रेस्तरां में बियर पीने चले जाते। कभी वो डॉक्टर के घर खाना खाता, कभी वे लोग शहर से थोड़ी दूर के ढाबे में चले जाते। शायद अखिल के सहारे ही डॉक्टर ने मेरे अपने जीवन को जानना शुरू किया होगा। अब वो मेरी बीमारी के बारे में नहीं, मेरे अतीत के बारे में जानना चाहता। मेरी पुस्तकों के पन्ने पलटता और मेरे मित्रों और रिश्तों के बारे में सुनता। मेरे लिए वे दिन किसी लंबे और आत्मीय स्वप्न की तरह थे, जिसे एक न एक दिन टूटना था। मैं स्वप्न में चलती रहती, बहन की अलग अलग रंग की साड़ियाँ पहनती, बालों को कसकर बांधती और बड़ी सी बिंदी मेरे माथे पर ठहरी रहती। 20 बरस के शून्य अंतराल के बाद मेरे भीतर स्त्री होने की चाहना जागने लगी। मैं एक बिखरे हुए स्वप्न और अतीत को समेटने लगी। अपनी टूटी हुई बिखरी हुई जिंदगी को संवारना उस उम्र में एक अलग तरह का मज़ा था, और मजाक भी, एक बड़ा सा जोक जो जोंक की तरह मुझसे लिपटा रहता था। अब चिड़ियाघर का शेर दहाड़ता तो मैं उसमें प्रेमी की करुण पुकार सुनती। नर्स के बालों का फूल मुझे अवसाद से नहीं भरता और मेहतरानी की चूड़ियाँ बचपन के शादी ब्याह के दिनों के उल्लास और उत्साह की याद दिलाती। अब रविंद्रनाथ की नायिकाएं और ज़्यादा अपनी हो गई थीं और फैंस के पार का बरगद बूढ़ा नहीं, सिर्फ बड़ा दिखाई देने लगा था। अब न आसपास कोई बूढ़ा था और न कोई बीमार। मैं किसी युवा परिंदे की तरह आकाश के विस्तार को पकड़ रही थी और मुझे अपनी वो असाधारण उड़ान एकदम सहज और सुंदर महसूस हो रही थी। एक शाम अचानक बारिश होने लगी। अखिल और डॉक्टर एक कंसर्ट में गए थे, जब लौटे तो भीगे हुए। वे सीधे मेरे पास आए। डॉक्टर के चेहरे पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। उन बूंदों को देखकर मेरे अंदर बवंडर सा उठा और मैं अपने तौलिए से डॉक्टर का सिर पोंछने लगी। डॉक्टर चौंक सा गया। मेरी उंगलियां उसके बालों में घूम रही थीं। वो एक भयावह और सम्मोहक क्षण था। उस एक मिनट में मेरी वासना ने सदियों का सफ़र तय किया था। वो वासना और विलास का ऐसा विस्तार था जिसके तट पर पाप की पहाड़ी थी, अपराध का नंगा निर्लज और जंगली पेड़ था। उसके बाद डॉक्टर और अखिल चले गए। मैं सोचती रही कि मेरे उस उन्माद को अखिल ने और अखिल से ज़्यादा डॉक्टर ने किस तरह महसूस किया होगा। मैं अपनी अंधी वासना और डॉक्टर की बेचैन आँखों के अर्थ ढूंढती रही। उस रात मुझे पहली बार अपनी सूनी देह के सूनेपन का ध्यान आया भी तो जल्दी ही लौट गया। उस बार जैसा जंगली और जिद्दी उन्माद मुझे एक जीवित नर्क के अलावा क्या दे सकता था। बरसों से जो लोग मुझे एक समर्पित साध्वी समझते रहे थे, वही मुझे एक वेश्या की तरह देखने लगते। उनकी नज़रों में मेरी सालों की साधना एक सस्ता सवाल खड़ा कर देती और मैं कहीं की नहीं रह जाती। समाज और संसार का ये डर हमेशा मेरे साथ रहता, किंतु डॉक्टर के करीब आते ही वो मुझसे दूर चला जाता। डर से कहीं ज़्यादा मैं एक चाहना महसूस करने लगती। डॉक्टर के हाथ का स्पर्श मेरी समूची देह को झंझना जाता। पंखों, दीवारों और मरीजों से होती हुई मेरी निगाहें डॉक्टर की आंखों पर देर तक ठहर जाती। मुझे घुघराले बालों से चिढ़ थी, उनसे मुझे जवानी की एक यात्रा और यातना याद आती थी, जिसमें रात को ट्रेन की बर्थ पर लेटे घुघराले बालों वाले एक युवक को मैंने अपनी पिंडलियों पर हाथ फेरते हुए पकड़ा था। किंतु डॉक्टर के बाल मुझे उस यातना की नहीं, अपनी लालसा और लज्जा की याद दिलाते थे। उन बालों से मेरी तमन्ना और तसल्ली की शुरुआत होती थी। एक बूढ़ी, बीमार और बंजर शुरुआत, जिसमें जवानी के दिनों की निष्ठा थी और निराशा भी। अब मैं अनिल के लौटने का इंतज़ार करने लगी। उसके रहते मैं वो सब नहीं कर पाती जिसकी लालसा और ललक मेरे अंदर सुलग रही थी। अखिल को देखकर मुझे अपनी ढलती उम्र, डॉक्टर की जवानी और इनके बीच तड़पती अपनी उजाड़ इच्छाओं का ध्यान आता। अखिल की मौजूदगी एक तरह की बाधा थी मेरे भीतर के पाश को बांधती हुई। लौटते समय अखिल एक बदला हुआ लड़का नजर आया। शायद उसने मेरे पाप को पहचान लिया था। उसने हमेशा अपनी माँ की ऊंचाइयों के बारे में ही सुना था और अब वो अपनी माँ के पतन और पछतावे को पहचान रहा था। ये मेरा भ्रम भी हो सकता था। मेरी उम्र में प्रेम के अपने भ्रम होते हैं और भटकाव भी। भ्रमों और भूलों के बीच भटकना बचपन से ही मेरी नियति रही है। मैं अपनी ढेर सी भूलों और तरह तरह के भ्रमों के बारे में डॉक्टर से बात करना चाहती थी। मैं उसे अपने पहले और आखिरी प्रेम, अपने विवाह और उसके टूटने, अखिल के पैदा होने और उसके बड़े होने की कथाएं सुनाना चाहती थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी से अपने दुख सुख को बांटने के लिए मन तरस रहा था। मैंने सदियों से किसी की इतनी बेताबी के साथ प्रतीक्षा नहीं की थी। शास्त्रीय गायन के रिकॉर्डों की गहरी और घनी पीड़ा पहली बार अपनी संपूर्णता में महसूस हो रही थी। 50 बरस की लंबी ऊबड़ खाबड़ और नीरस जिंदगी में मैंने इस तरह की प्रतीक्षा के सुख और अवसाद को नहीं जाना था। वे राग और विराग के रिश्तों को समझने के दिन थे। उन दिनों रविन्द्रनाथ की चौखेर बाली कुछ ज़्यादा ही अपनी लगी। विनोदनी की व्यथा कुछ अधिक ही आत्मीय लगने लगी थी। पढ़ते हुए मैं कितनी जगहों पर स्याही की लाइनें खींचती और सोचती कि काश डॉक्टर को इन उपन्यासों में दिलचस्पी होती, तब इनके सहारे वो मेरी खुद की मनस्थिति को समझ पाता। कई बार लगता कि अपनी चाहना को चिट्ठी में लिखूं और किसी किताब में रखकर डॉक्टर को दे दूं। इससे चाहे जितना अपमान सहना पड़े, हमेशा की ये यातना तो नहीं रहेगी। मैं समझ सकती थी कि बूढ़े मन को उस चाहना का अंत खाली बंजर और बदनाम बनकर ही होना था, किंतु मन था कि बूढ़े गिद्ध की तरह पंख फड़फड़ाना नहीं भूलता था। बरसों से थमा ज्वालामुखी अपने होने को किसी भी तरह साबित करना चाहता था। अंततः अस्पताल में मेरा आखिरी दिन आ गया। उस दिन के पहले वार्ड की एक बूढ़ी और लावारिस बंगाली औरत की मौत हो गई। मेरे 20 दिनों की अवधि में वो पहली मृत्यु थी। एक शांत और शालीन मौत। कोई नहीं रोया, कोई नहीं चीखा, उसका कोई था ही नहीं। वो लंबी तीर्थयात्रा पर निकली थी और इस शहर में आकर बीमार पड़ गई। एक अलग सी अर्थपूर्ण मौत रही। इस मौत से बहुत कुछ सुना जा सकता था। डॉक्टर का उस बुढ़िया से अंतरंग रिश्ता था और वो समय समय पर उसके लिए बंगाली मिठाइयाँ और मछली की तरकारी लाता रहा था। उसकी मौत से वार्ड खामोश बना रहा और डॉक्टर उदास। उस रात को ही मैंने डॉक्टर को लिखी चिट्ठी फाड़ दी। मेरा मन अचानक उछट गया। एक तरह की वीरानगी ने मुझे घेरना शुरू कर दिया। वैसे भी मृत्यु की लीला के बाद प्रेम की पीड़ा छोटी और छिछोरी हो जाती है। बुढ़िया की मौत ने मुझे एक तरह से बचा लिया। भीतर का तूफान थमने लगा, प्रेम का बुखार उतरने लगा, किंतु डॉक्टर के करीब आते ही उसकी कमीज के टूटे बटन को देखते ही पुरानी वासना लौटने लगी। वासना की वापसी का क्षण आया ही था कि अचानक बुढ़िया का मृत चेहरा सामने आ गया। भीतर बर्फ की तरह कुछ जम गया। एक तरह का विराग, एक किस्म की वीरानगी, एक प्रकार की हताशा। मैंने रविन्द्रनाथ की तीनों पुस्तकों पर कुछ औपचारिक शब्द लिखे और डॉक्टर को दिया। मैं इन किताबों को जरूर पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। इन्हें पढ़ूंगा तब आपको याद भी करूंगा। मुझे और क्या वैसे याद नहीं करोगे? मैंने आपसे ज़्यादा उदास औरत कभी नहीं देखी है। डॉक्टर के उस वाक्य को सुनकर मैं हंसने लगी। एक रूखी और झूठी हंसी जो मुझे बनावटी बना देती थी। बाहर बहन मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने आखिरी बार डॉक्टर को नमस्ते किया और कुछ औपचारिक वाक्य कहे, एकदम सूखे और सरल वाक्य जो याद आ जाते हैं किंतु कुछ भी याद नहीं दिलाते। सबसे विदा लेने के बाद मैं बाहर आ गई। शाम को शहर छोड़ना ना होता तो ज़रूर ही चिड़ियाघर के उन शेरों को देखने जाती जिनकी आवाज़ें मैं सुनती रहती थी। बाहर नवंबर के दिन में डूबा शहर था। रिक्शा में बैठकर मैंने अस्पताल की पीली इमारत की बालकनी में खड़ी औरतों को देखा था। मैं उन औरतों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैंने तो उन स्त्रियों को भी नहीं जाना था जिनके बीच में बरसों से काम करती रही थी। पहली बार किसी को न जान पाने की पीड़ा से पहचान हुई थी। मैं उस पराए शहर में एक पराए पछतावे के साथ जी रही थी। वो एक छोटे शहर का बड़ा सा दुख लिए हुए दिन था। आज अचानक सर्दियों के लिए गर्म कपड़े निकालते हुए अस्पताल की सर्दियों की दोपहरों और वहाँ के रंगीन सुंदर और विदेशी कंबलों का ख्याल आ गया। उनमें ही से किसी कंबल को अपनी देह पर चढ़ाए मैंने रवींद्रनाथ की नायिकाओं को समझा था, उनकी नायिकाओं की जीने की तमन्नाओं को पाला था। वे दिन भी जिंदगी के कितने ही दिनों की तरह अतीत के हिस्से बन गए। आज मैं उन दिनों को ऐसे देख रही हूँ जैसे वे किसी और के जीवन में बीते हों, किसी दूसरी की व्यथा जो उस छोटे शहर में प्यार कर रही थी, जी रही थी, मर रही थी।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पण।